इतिहास खंड। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित कृति कनुप्रिया का यह चतुर्थ खंड है। इतिहास खंड में 7 कविताएं हैं। महाभारत का युद्ध समापन की ओर है। राधा अब भी आम्र मंजरी से अपनी मांग भरे उसी अशोक वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा कर रही है कि महाभारत की अवसान बेला में अपनी 18 अक्षौहिणी सेनाओं के विनाश के बाद खिन्न, उदासीन और आहत कृष्ण अगर वापस आए तो वो पुनः उन्हें नन्हे बालक सा अपने आंचल में समेट लेगी। ये संपूर्ण रचना राधा के आधार पर चलती है, परंतु वह प्रश्नों के माध्यम से आधुनिक नारी की मानसिकता को भी व्यक्त करती है। अस्तित्व की समस्या, युद्ध की समस्या को कहीं कहीं व्यंग्य और मानवीयकरण के रूप में उठाया गया है इन कविताओं में। चलिए गाथा पर सुनते हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित कृति कनुप्रिया का ये चतुर्थ खंड, इतिहास खंड, पल्लवी की आवाज में। विप्रलब्धा। बुझी हुई राख, टूटे हुए गीत, डूबे हुए चांद, रीते हुए पात्र, बीते हुए क्षण सा मेरा ये जिस्म। कल तक जो जादू था, सूरज था, वेग था तुम्हारे आश्लेष में, आज वह जूड़े से गिरे हुए बेले सा टूटा है, म्लान है, दुगना सुनसान है बीते हुए उत्सव सा, उठे हुए मेले सा। मेरा ये जिस्म टूटे खंडहरों के उजाड़ अंतःपुर में छूटा हुआ एक साबित मणि जटित दर्पण सा। आधी रात दंश भरा, बाहुहीन, प्यासा, सर्पीला कसावेक जिसे जकड़ लेता है अपनी गुंजलक में। अब सिर्फ मैं हूं, यह तन है और याद है। खाली दर्पण में धुंधला सा एक प्रतिबिंब मुड़ मुड़ लहराता हुआ निज को दोहराता हुआ। कौन था वह जिसने तुम्हारी बाहों के आवर्त में गरिमा से तनकर समय को ललकारा था? कौन था वो जिसकी अलकों में जगत की समस्त गति बंधकर पराजित थी? कौन था वो जिसके चरम साक्षात्कार का एक गहरा क्षण सारे इतिहास से बड़ा था, सशक्त था? कौन था कनु वह? तुम्हारी बाहों में जो सूरज था, जादू था, दिव्य था, मंत्र था। अब सिर्फ मैं हूं, यह तन है और याद है। मंत्र पढ़े बाण से छूट गए तुम तो कनु, शेष रही मैं केवल कांपती प्रत्यंचा सी। अब भी जो बीत गया उसी में बसी हुई, अब भी उन बाहों के छलावे में कसी हुई। जिन रूखी अलकों में मैंने समय की गति बांधी थी, हाय उन्हीं काले नाग पाशों से दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण, बार बार डसी हुई। अब सिर्फ मैं हूं, यह तन है और संशय है। बुझी हुई राख में छिपी चिंगारी सा, रीते हुए पात्र की आखिरी बूंद सा, पाकर खो देने की व्यथा भरी गूंज सा, पाकर खो देने की व्यथा भरी गूंज सा। सेतु में नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसे जाना था वह चला गया। हाय मुझे पे पग रख, मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। सुनो कनु, सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में? अब इन सोने शिखरों, मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गुथे तारों वाले पुल सा निर्जन, निरर्थक, कांपता सा यहां छूट गया मेरा ये सेतु जिस्म। जिसको जाना था वह चला गया, जिसको जाना था वह चला गया। उसी आम के नीचे, उस तन्मयता में तुम्हारे वक्ष में मुंह छिपाकर लजाते हुए मैंने जो जो कहा था, पता नहीं उसमें कुछ अर्थ था भी या नहीं? आम्र मंजरियों से भरी हुई मांग के दर्प में मैंने समस्त जगत को अपनी बेसुधी के एक क्षण में लीन करने का जो दावा किया था, पता नहीं वो सच था भी या नहीं। जो कुछ अब भी इस मन में कसकता है, इस तन में कांप कांप जाता है, वो स्वप्न था या यथार्थ, अब मुझे याद नहीं। पर इतना जरूर जानती हूं कि इस आम की डाली के नीचे जहां खड़े होकर तुमने मुझे बुलाया था, अब भी मुझे आकर बड़ी शांति मिलती है। ना, मैं कुछ सोचती नहीं, कुछ याद भी नहीं करती। सिर्फ मेरी अनमनी भटकती उंगलियां मेरे अनजाने धूल में तुम्हारा वह नाम लिख जाती हैं जो मैंने प्यार के गहनतम क्षणों में खुद रखा था और जिसे हम दोनों के अलावा कोई जानता ही नहीं। और ज्यों सचेत होकर अपनी उंगलियों की इस दृष्टता को जान पाती हूँ, चौंक कर उसे मिटा देती हूँ। उसे मिटाते दुख क्यों नहीं होता कनु? क्या अब मैं केवल दो यंत्रों का पुंज मात्र हूं? दो परस्पर विपरीत यंत्र, उनमें से एक बिना अनुमति नाम लिखता है, दूसरा उसे बिना हिचक मिटा देता है। तीसरे पहर चुपचाप यहां छाया में बैठ जाती हूं और हवा ऊपर ताजी नरम टहनियों से और नीचे कोपलों पे झूलती हुई मेरी रूखी अलकों से खेल करती है और मैं आंख मूंद कर बैठ जाती हूँ और कल्पना करना चाहती हूँ कि उस दिन बरसते में जिस छौने को अपने आंचल में छिपा कर लाई थी, आज वह कितना 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 महान हो गया है। लेकिन मैं कुछ नहीं सोच पाती। सिर्फ जहां तुमने मुझे अमित प्यार दिया था, वहीं बैठकर कंकड़ पत्ते तिनके टुकड़े चुनती रहती हूँ। तुम्हारे महान बनने में क्या मेरा कुछ टूटकर बिखर गया कनु? वह सब अब भी ज्यों का त्यों है। दिन ढले आम के नए बोरों का चारों ओर अपना माया जाल फेंकना, जाल में उलझकर मेरा बेबस चले आना, नया है केवल मेरा सूनी मांग आना। सूनी मांग, शिथिल चरण, असमर्पिता, ज्यों का त्यों लौट जाना। उस तन्मयता में आम्र मंजरी से सजी मांग को तुम्हारे वक्ष में छिपा कर लजाते हुए बेसुध होते होते मैंने जो सुना था, क्या उसमें भी कुछ अर्थ नहीं था? क्या उसमें भी कुछ अर्थ नहीं था? अमंगल छाया। घाट से आते हुए कदंब के नीचे खड़े कनु को ध्यानमग्न देवता समझ प्रणाम करने जिस राह से तू लौटती थी बावरी, आज उस राह से ना लौट। उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही हैं? आज उस पद से अलग हटकर खड़ी हो भावरी, लता कुंज की ओर छिपा ले अपने आहत प्यार को। आज इस गांव से द्वारका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही हैं। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि तू उसकी रोम रोम परिचित है, मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक उसके हैं, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते। पथ से हट जा बावरी। यह आम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी। तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिक उन्होंने बंशी में बार बार तेरा नाम भर कर तुझे टेरा था। आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेग गामी रथों की गगन चुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा तो क्या? यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा? दुख क्यों करती है पगली? क्या हुआ जो कनु के ये वर्तमान अपने तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ हैं? उदास क्यों होती है ना समझ कि इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए? गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 अक्षौहिणी सेनाएं हों? गर्व कर बावरी, गर्व कर। एक प्रश्न। अच्छा मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार लूं कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थीं, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार लूं कि पाप पुण्य, धर्माधर्म, न्याय दंड, क्षमा क्षील वाला तुम्हारा यह युद्ध सत्य है, तो भी मैं क्या करूं कनु? मैं तो वही हूं, तुम्हारी बांवरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला है जितना तुमने उसे दिया। जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक, उसे पूरा समेट कर भी आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। अपनी जमुना में जहां घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, वहां अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहां जाती हैं? धारा में बह बह कर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएं किसकी हैं? हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं युद्ध की, क्या ये सब सार्थक हैं? चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़ कर जाते हुए गृद्धों को क्या तुम बुलाते हो, जैसे बुलाते थे भटकी हुई गायों को? जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कनु, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता है क्या बंधु? मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो सार्थक फिर है क्या कनु? तो सार्थक फिर है क्या? शब्द अर्थहीन, पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनु? शब्द 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 मेरे लिए सब अर्थहीन है। यदि मैं मेरे पास बैठकर मेरे रूखे कुंतलों में उंगलियां उलझाए हुए तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। शब्द शब्द शब्द, कर्म स्वधर्म, निर्णय दायित्व, मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द। अर्जुन ने इनसे चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिया। सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। तुम्हारा सांवरा लहराता हुआ जिस्म, तुम्हारी किंचित मुड़ी हुई शंख ग्रीवा, तुम्हारी उठी हुई चंदन बाहें, तुम्हारी अपने में डूबी हुई अधखुली दृष्टि, धीरे धीरे हिलते हुए तुम्हारे जादू भरे होंठ। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है, लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सेनाएं स्तब्ध खड़ी हैं और इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व, शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। मैं इन सब के परे अपलक तुम्हें देख रही हूं, हर शब्द को अंजुरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूं, और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है, और तुम्हारे जादू भरे होंठों से रजनीगंधा की फूलों की तरह टप टप शब्द झर रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, मुझ तक आते आते सब बदल गए हैं। मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन राधन, शब्द शब्द शब्द। तुम्हारे शब्द अगणित है कनु, संख्यातीत, पर उनका अर्थ मात्र एक है, मैं केवल मैं। फिर उन शब्दों से मुझी को इतिहास कैसे समझाओगे कनु, कैसे समझाओगे कनु, कैसे समझाओगे? समुद्र स्वप्न, जिसकी शेष शैया पर तुम्हारे साथ युग युगों तक क्रीड़ा की है, आज उस समुद्र को मैंने स्वप्न में देखा कनु। लहरों के नीले अवगुंठन में जहां सिंदूरी गुलाब जैसा सूरज खिलता था, वहां सैकड़ों निष्फल सीपियां छटपटा रही हैं और तुम मौन हो। मैंने देखा कि अगणित विक्षुब्ध विक्रांत लहरें फेन के शिरस्त्राण पहने, सिवार का कवच धारण किए, निर्जीव मछलियों के धनुष लिए युद्ध मुद्रा में आतुर हैं, और तुम कभी मध्यस्थ हो, कभी तटस्थ, कभी युद्धरत। और मैंने देखा कि अंत में तुम थक कर इन सब से खिन्न, उदासीन, विस्मृत और कुछ कुछ आहत मेरे कंधों से टिक कर बैठ गए हो, और तुम्हारी अनमनी उंगलियां तट की गीली बालू पर कभी कुछ लिख देती हैं, किसी उपलब्धि को व्यक्त करने के अभिप्राय से नहीं, मात्र उंगलियों को ठंडे जल में डुबोने का क्षणिक सुख लेने के लिए। आज उस समुद्र को मैंने स्वप्नों में देखा कनु, विष से भरे फेन, निर्जीव सूर्य, निष्फल सीपियां, निर्जीव मछलियां, लहरें नियंत्रणहीन होती जा रही हैं, और तुम तट पर बाह उठा उठा कर कुछ कह रहे हो, पर तुम्हारी कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। अंत में तुम हार कर लौट कर थक कर मेरे वक्ष के गहराव में अपना चौड़ा माथा रख कर गहरी नींद में सो गए हो, और मेरे वक्ष का गहराव समुद्र में बहता हुआ बड़ा सा ताजा कुंवारा मुलायम गुलाबी वटपत्र बन गया है, जिस पर तुम छोटे से छोने की भांति लहरों के पालने में महाप्रलय के बाद सो रहे हो। नींद में तुम्हारे होंठ धीरे धीरे हिलते हैं, स्वधर्म, आखिर मेरे लिए स्वधर्म क्या है? और लहरें थपकी देकर तुम्हें सुलाती हैं, सो जाओ योगीराज, सो जाओ, निद्रा समाधि है। नींद में तुम्हारे होंठ धीरे धीरे हिलते हैं, न्याय अन्याय, सत असत, विवेक अविवेक, कसौटी क्या है, आखिर कसौटी क्या है? और लहरें थपकी देकर तुम्हें सुला देती हैं, सो जाओ योगेश्वर, जागरण स्वप्न है, छलना है, मिथ्या है। तुम्हारे माथे पर पसीना छलक आया है और होंठ कांप रहे हैं, और तुम चौंक कर जाग जाते हो, और तुम्हें कोई भी कसौटी नहीं मिलती, और जुए के पासे की तरह तुम निर्णय को फेंक देते हो। जो मेरे पैताने हैं वो स्वधर्म, जो मेरे सिरहाने हैं वो अधर्म। और यह सुनते ही लहरें घायल सांपों सी लहर लेने लगती हैं, और प्रलय फिर शुरू हो जाती है, और तुम फिर उदास होकर किनारे बैठ जाते हो, और विषादपूर्ण दृष्टि से शून्य में देखते हुए कहते हो, यदि कहीं उस रोज मेरे पैताने दुर्योधन होता तो। आह, इस विराट समुद्र के किनारे ओ अर्जुन, मैं भी अबोध बालक हूं। आज मैंने समुद्र को स्वप्न में देखा कनु। तट पर जल देवदारुओं में बार बार कंठ खोलती हुई हवा के गूंगे झकोरे, बालों पर अपने पग चिन्ह बनाने के करुण प्रयास में बैसाखियों पर चलता हुआ इतिहास, लहरों में तुम्हारे श्लोकों से अभिमंत्रित गांडीव गले हुए सिवार सा उतर आया है, और अब तुम तटस्थ हो और उदास। समुद्र के किनारे नारियल के कुंज हैं और तुम एक बूढ़े पीपल के नीचे चुपचाप बैठे हो, मौन, परिशमित, विरक्त, और पहली बार जैसे तुम्हारे अक्षय तरुणाई पर थकान छा रही है, और चारों ओर एक खिन्न दृष्टि से देखकर, एक गहरी सांस लेकर तुमने असफल इतिहास को जीर्ण वसन की भांति त्याग दिया है, और इस क्षण केवल अपने में डूबे हुए दर्द में पके हुए तुम्हें बहुत दिन बाद मेरी याद आई है। कांपती हुई दीप लौ जैसे पीपल के पत्ते एक एक कर बुझ गए। उतरता हुआ अंधियारा, समुद्र की लहरें अब तुम्हारी फैली हुई सांवली शिथिल बाहें हैं, भटकती सीपियां तुम्हारे कांपते अधर, और अब इस क्षण तुम केवल एक भरी हुई पकी हुई गहरी पुकार हो, सब त्याग कर मेरे लिए भटकती हुई।